नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज के संस्करण में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विनय सक्सेना और मेरे साथ तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ श्री मलय नीरव। मलय जी नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंची। यूरो 2024 में इटली अंतिम 16 में पहुंचा और बीडब्ल्यूएफ यूएस ओपन महिला डबल्स में भारत का नेतृत्व ट्रीजा जॉली और गायत्री गोपीचंद करेंगी। पुरुषों के आईसीसी T20 विश्व कप में सेंट विंसेंट के किंगस्टन में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस पद्धति से 8 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अन्य तीन टीमें भारत, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका हैं। भारत का मुकाबला बृहस्पतिवार को सेमीफाइनल में गयाना में पिछली बार की चैंपियन इंग्लैंड से होगा। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 गेंदों पर 92 रनों की शानदार पारी के लिए रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद उन्होंने कहा कि 50 और 100 रन उनके लिए मायने नहीं रखते बल्कि गेंदबाजों पर दबाव बनाना ज्यादा जरूरी है। आयरलैंड के खिलाफ अर्धशतक बनाने के बाद रोहित बल्ले से लगातार फ्लॉप रहे, लेकिन हिटमैन ने T20 विश्व कप के एक महत्वपूर्ण सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। रोहित शुरू से ही पूरी ताकत से खेलने के मूड में थे। उन्होंने 224.39 स्ट्राइक रेट से 7 चौके और 8 छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज लाइनअप की बखिया उधेड़ दी। रोहित की बल्लेबाजी के अलावा सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने क्रमशः 31, 28 और नाबाद 27 रन बनाकर भारत को 205-5 के शानदार स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर्स में 181-7 पर रोका और अपने विजय रथ को जारी रखा। भारत का अगला मैच 27 जून को गुयाना में दूसरे सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ होगा। इस मैच में जो भी जीतेगा वो 29 जून को बारबाडोस में फाइनल्स खेलेगा। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
मले जी, रोहित की पारी देख के ऐसा लगा जैसे वो विश्व कप में हुई हार का गुस्सा उतार रहे थे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी करी है।
देखिए, उन्होंने आते ही जिसको कहते हैं अपनी इच्छा जताई,
एक टोन सेट कर दिया,
इंटेंशन अपना बताया कि देख मैं यहां आज रन बनाने आया हूं और रन अपनी टीम के लिए बनाने आया हूं। मुझे जो सबसे अच्छी बात उनकी पारी में लगी, हालांकि अफसोस हुआ कि वो 92 पर आउट हो गए, मगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इन्होंने अपने लिए नहीं खेला ये मैच, इन्होंने टीम के लिए खेला और जो एक गति थी उसको प्रदान किया अपने स्कोर को। स्कोर बोर्ड में लगातार रन जुड़ते रहे, छक्के चौकों की बरसात होती रही, गेंद पवेलियन के छत पर तो कभी छत के उधर इधर, और उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने धैर्य नहीं खोया और जो जब वो आउट हुए तो रनों को एक्सेलरेट करने के लिए, रन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, वहां पे बहुत कम ओवर बचे थे और उन्होंने सोचा कि जितने ज्यादा से ज्यादा रन बना पाए तो हमारे देश के लिए एक मजबूत नींव तैयार होगी। तो इस नींव को तैयार करने वाला अंगूरे का कलश बनकर कल चमका है।
लेकिन अब देखा जाए तो जब टीम जीतती है तो कुछ कमियां खिलाड़ियों की छुप जाती हैं, क्योंकि जब हम बॉलिंग के लिए उतरे तो जिस तरह से ट्रेविस हेड ने बल्लेबाजी करी तो एक बार तो खतरे की घंटी बनी गया था भारत के लिए।
देखिए, अगर आप पूरी टीम को देखें, इस पूरे टूर्नामेंट को देखें, तो वो जमाना लद गया भारतीय टीम के लिए जब हम एक, दो या तीन खिलाड़ियों पर निर्भर होकर कहा करते थे कि यही लोग मैच जिताकर देंगे और अगर वो तू चल मैं आया वहां लग गई वो बात, वो रोग लग गया तो समझिए मैच गया। अब इस टीम में जो संतुलन है उसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि जब रोहित विराट नहीं चले तो कोई बात नहीं, रोहित चल रहे हैं, जडेजा नहीं चले तो कोई बात नहीं, अर्शदीप चल रहे हैं और उसके बाद अक्षर पटेल चल रहे हैं, तो कोई ना कोई आकर वहां दामन थाम लेता है। तो ये जो टीम एक टीम के रूप में जब खेलने लगती है तो इसी तरह के परिणाम सामने आते हैं। कभी भी वो होता है जो आत्मसमर्पण की भावना कहीं टीम में अंत समय तक आपको दिखाई नहीं दी। हार्दिक की पिटाई हो रही थी, जबरदस्त धुनाई हो रही थी। कई लोग कह रहे थे इसके हाथ में गेंद क्यों है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 20 ओवर डालने हैं और एक खिलाड़ी चार से नहीं डाल सकता तो कप्तान को पता है ना कि कुलदीप से हम चार से ज्यादा नहीं डलवा सकते। और जो सेंट लूसिया की विकेट है, जो वहां की विकेट थी, जो वेस्ट इंडीज की विकेटें हैं, वो अमरीका की विकेटों की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है। वहां अगर आप देखें तो इस विकेट पर तेज गेंदबाजों का जो औसत था वो औसत 9 रन प्रति ओवर से ज्यादा का रहा है इस टूर्नामेंट में अभी तक देखा जाए तो, और जो स्पिनर्स का औसत है वो 7 से थोड़ा ऊपर रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगा कि टीम ने जो संतुलन कायम किया, जो रोहित ने एक नेतृत्व प्रदान किया, जो शीर्षस्थ नेतृत्व जिस तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और अपने इंटेंशन को जाहिर करते हुए, उसका परिणाम हुआ कि आपने देखा कि भारत ये मैच जीता, और जीता ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया को ये बता दिया कि अगर जुगनुओं की चमक को चांदनी समझने लगोगे तो यही हाल होगा।
अब मैच इंग्लैंड से है जो पूर्व विश्व चैंपियन है टी20 का, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए?
बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आप जो बीत गई सो बात गई, 19 नवंबर की कहानी और 2019 और 2022 के 10 नवंबर की कहानी को भूलना पड़ेगा। अब वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है,
वक्त दूसरा है,
अभी आपको उसको भूलना होगा। और इतिहास के पन्नों में क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, इतिहास के पन्ने जुड़ते रहते हैं और बदलते रहते हैं। अगर ऐसा होता तो वेस्ट इंडीज को छोड़कर कोई कभी विश्व चैंपियन नहीं बनता। तो अभी जो टीम की परिस्थिति है, जो टीम में जिस तरह का संतुलन कायम है, मुझे लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं इंग्लैंड के बारे में कहा जा रहा है कि उनके दो तुरुप केक के हैं, एक आर्चर और दूसरा वो जो लेग स्पिनर राशिद आए हैं, तो वो दो लोग जो हैं वो तुरुप केक के हैं, उनके एक या दो तुरुप केक के हो सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारे पास इक्कों के भंडार हैं, कौन कब चल जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये हताशा जो हमारे में हो जाती, हमारे बीच भारत में खासकर मैंने देखा है, जहां हर व्यक्ति क्रिकेट का विश्लेषक है, एक हताशा होती है, अरे विराट कोहली नहीं चल रहे। रिक्शा वाला भी मुझसे कह रहा था सुबह एक कि भाई विराट कोहली को क्या हो गया सर, मैं तो आपको सुन रहा था। अब ऐसी बातें जब होने लगती हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक मैच काफी होता है विराट और जडेजा की वापसी के लिए, और ना भी वापस हुए तो क्या हुए, आज नहीं तो कल होंगे। और जिस तरह से भारत की टीम खेल रही है मुझे लगता है, और लेकिन इंग्लैंड को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसलिए भी नहीं लेना चाहिए, ये ना सोचें कि दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें हरा दिया तो कोई कमजोर टीम है, कमजोर टीम नहीं है, बड़ी मजबूत टीम है। उनकी बैटिंग लाइनअप में जो डेप्थ है उसको आप देखिए, और ऊपर से जो आर्चर अगर गेंद डालने लगेंगे और उनके खिलाड़ी जब पीटने लगेंगे, तो पिछली बार आपको याद होगा कि 170 रन बना दिए थे बिना विकेट खोए हुए और सेमीफाइनल जीत कर ले गए थे।
तो आज तक कायम
है। तो मेरे ख्याल से कुल मिलाकर यह है कि संतुलन और संयम दोनों बनाकर खेलने की जरूरत है।
अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की। महिला टी20 एशिया कप के पहले मैच में 19 जुलाई को पाकिस्तान से खेलेगा भारत, और श्रीलंका के दम्बूला में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अभियान की शुरुआत 19 जुलाई को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ होगी। ये टूर्नामेंट 19 से 28 जुलाई तक खेला जाएगा, जिसमें महाद्वीप की 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने मंगलवार को घोषित नवीनतम आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी में 2 स्थान की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। मंधना अब 715 अंकों के साथ श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू और इंग्लैंड की नटाइली साइबरफ्रंट से पीछे हैं। ये एक अच्छी खबर।
देखिए हरमनप्रीत और मंधना दोनों ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा, उनकी रैंकिंग में उनका स्थान ऊपर गया, और हरमनप्रीत ने भी लंबी छलांग मारी। और इस समय अगर आप देखें कि जो टॉप 10 है उसमें ये दोनों शामिल हैं, तो मेरे ख्याल से भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा संकेत है, ये एक शुभ संकेत है और सही वक्त पे आ रहा है। जबकि ये कहा जा रहा था कि कॉन्सिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है, उनके खेल में किसी तरह की लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है, फिर वही बात आलोचक जब आलोचना करने के लिए बैठते हैं तो एक या दो मैच को नहीं, हर मैच को देखने की जरूरत होती है। अगर आईसीसी रैंकिंग में एक स्थान ऊपर या नीचे भी हो गया तो इससे बहुत फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हौसले बुलंद होते हैं जब हरमनप्रीत को ये लगता है, ये एहसास होता है कि दुनिया की जो बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनके सामने, और जब उनका बल्ला बोलने लगता है तो बोलता है सिर्फ आतिशबाजी वाली अंदाज में,
जैसे अभी बोला था
और मर्दाना स्मृति का भी बल्ला वैसे ही बोलता है। तो इन लोगों पर हमारी बड़ी नजर रहेगी आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि जो नई पौध,
वो तो मलय जी हम अभी जो T20 एशिया कप होगा
उसमें देखेंगे जो नई पौध क्रिकेट की तैयार हो रही है विनय जी, सबसे बड़ी बात यह होती है ये खिलाड़ी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। भारत में आज अगर आप बोलिंग कराना चाहें, आपकी टीम में 6-7 खिलाड़ी हैं, अगर विकेटकीपर आप ऑलराउंडर देख लीजिए, एक पर एक, तो इस तरह से अगर आप अपनी टीम का चयन करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है।
अब बात करते हैं यूरो की, फुटबॉल की। क्रोएशिया के खिलाफ इटली की तरफ से आखिरी मिनटों में किए गए 1-1 गोल की बराबरी से मौजूदा चैंपियन इटली ने यूरो 2024 के अंतिम 16 में जगह बना ली है, जबकि स्पेन ने अंतिम दौर में अल्बानिया पर 1-0 की जीत के साथ ग्रुप बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। भारतीय समय के अनुसार आज रात 9:30 बजे दो मैच खेले जाएंगे, एक मैच फ्रांस और पोलैंड के बीच होगा और दूसरा मैच नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच खेला जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय समय के अनुसार देर रात 12:30 बजे दो मैच खेले जाएंगे, पहला मैच डेनमार्क और सर्बिया के बीच होगा और दूसरा मैच इंग्लैंड और स्लोवेनिया के बीच खेला जाएगा। और दूसरी तरफ कोपा अमेरिका की बात करें तो ब्राजील को कोपा अमेरिका फुटबॉल के पहले मैच में कोस्टा रिका ने गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया है। 9 बार की चैंपियन ब्राजील ने गेंद पर नियंत्रण और विरोधी गोल पर हमलों में दबदबा बनाया, लेकिन कोस्टा रिका के गोलकीपर पैट्रिक स्क्वेरा काफी मौजूद थे जिन्होंने कई गोल बचाए। यूरो में टीमें खेल तो अपने हिसाब से रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ टीमों पर बाहर जाने का खतरा अभी तक बना हुआ है,
और एक खतरा तो टाला है इटली ने, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चैंपियन रह चुकी इटली ही बाहर हो जाएगी।
बिल्कुल, डाइंग मोमेंट्स में एक्स्ट्रा टाइम में
लुसियानो स्पेलेटी की जो ये टीम है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना अजूबा ना हो जाए, क्योंकि क्रोएशिया जिस तरह से खेलती है, और वो भी नहीं है कि कमन टूट गई, ये नहीं है, उन्होंने टूटने नहीं दिया, वो एक बराबरी पर, और जब बेस्ट थर्ड रैंकर्स की गिनती होने लगेगी, जिस तरह से आप जानते हैं इसमें फॉर्मेट
है, बिल्कुल फॉर्मेट है,
12 तो आएंगी जो आएंगी,
क्लियर कट आएंगे, बाकी बेस्ट जो थ्री फोर हैं वो होंगी
थर्ड रैंकिंग टीम, उसमें क्रोएशिया के आने की पूरी चांस है। और जो 38 वर्ष की आयु में लुका मॉड्रिच ओल्डेस्ट स्कोरर बनते हैं यूरोज में, तो आप समझिए कि कितना दमखम है इन बूढ़ी टांगों में,
क्योंकि क्रोएशिया ही ऐसी टीम है जिसने एक नया पैटर्न सेट किया था फुटबॉल में।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जिस तरह से खेल का परिचय दिया है और अथक, बिल्कुल जिसको कहते हैं थकते नहीं, और उसके बाद जो आक्रामक खेल है उनका, और इटली कोई कम आक्रामक खेल नहीं खेलने वाली टीम है, वो डिफेंसिव होकर नहीं खेलती, वैसे में इटली के लिए एक समझिए जीवन दान के रूप में वो गोल आया, और उसके बाद उन्होंने जो किया, और लेकिन मैं यहां कल की बात अगर चली है और आज सुबह की भी बात चली है तो स्पेन की भी बात करनी चाहिए हमें, जिस तरह से स्पेन
एच पर है,
नहीं बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया उन्होंने, स्पेन अपनी जगह बना चुका टॉप 16 में, शायद जगह बन गई है उसकी, और उसने अल्बेनिया को हराया, जब तो जिस तरह से हराया, गोल नहीं खाया अभी तक, तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि 8वें-9वें के बीच में जब मुकाबला होता है तो बड़े कांटे का मुकाबला होता है, लेकिन जब जैसे आज रात का मुकाबला फ्रांस और पोलैंड के बीच का, पोलैंड ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, फ्रांस अपनी जगह प्राप्त कर चुका है, तो इस तरह के जो मुकाबले हैं उसमें बहुत दम नहीं है, लेकिन मेरी नजर इंग्लैंड की टीम पर है,
देखिए क्या होता है भाई,
क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम हरा देती है स्लोवेनिया को तो अपने ग्रुप में टॉप पर रहेगी।
बीडब्ल्यूएफ यूएस ओपन आज शाम टेक्सास के फोर्ट वर्थ कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। मुख्य ड्रॉ में शामिल खिलाड़ी कलेक्शन में होंगे। महिला डबल्स में भारत का नेतृत्व टीजा जॉली और गायत्री गोपीचंद करेंगी। वहीं दूसरी ओर पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गरागा और साई प्रतीक एकमात्र भारतीय जोड़ी हैं। प्रियांशु राजावट टेक्सास में भारतीय पुरुष सिंगल्स चुनौती का नेतृत्व करेंगे, जबकि मालविका बनसोडे सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगी। श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मलय जी आप आए और आपने तमाम खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद,
नमस्कार, इजाजत दीजिए।